षष्ठ अध्याय संस्कृत शिक्षण की पद्धतियाँ। संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं को किस प्रकार पढ़ाया जाए, इस पर आगे के अध्यायों में विचार किया जाएगा। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि संस्कृत भाषा की शिक्षा किन विधियों के द्वारा दी जाए। इस स्तर पर हम विधाओं की पृथक चर्चा न करके संपूर्ण संस्कृत भाषा की दृष्टि से पद्धतियों पर विचार करेंगे। संस्कृत शिक्षण पद्धतियों का हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्रथम, व्याकरण पद्धति। द्वितीय, विश्लेषणात्मक पद्धति। तृतीय, व्याख्या पद्धति। चतुर्थ, अनुवाद पद्धति। पंचम, प्रत्यक्ष पद्धति। षष्ठ, हरबार्टीय पंचपदी। सप्तम, मूल्यांकन का दृष्टिकोण। अष्टम, प्राचीन एवं नवीन पद्धतियों का संबंध। व्याकरण पद्धति। मातृभाषा के अतिरिक्त किसी भी भाषा को सीखने की यह एक विधि यह है कि हम उस भाषा के व्याकरण को अच्छी तरह जानें और व्याकरण सीखकर उस भाषा पर अधिकार प्राप्त करें। संस्कृत भाषा का भी इस दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। संस्कृत पाठशालाओं में यह पद्धति सर्वप्रचलित विधि के रूप में दिखाई पड़ती है। संस्कृत भाषा का व्याकरण बड़ा जटिल किंतु सुनिश्चित है। वेदों के अध्ययन के लिए प्राचीन समय में व्याकरण पर बल दिया जाता था। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प नामक 6 वेदांगों के अध्ययन में व्याकरण पर विशेष बल था। आज भी पाठशालाओं में व्याकरण को महत्व दिया जाता है और व्याकरण आचार्य को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। शताब्दियों से यह प्रथा चली आ रही है कि संस्कृत का अध्ययन करने का अर्थ है संस्कृत के व्याकरण का कुछ ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ना। छात्र आज भी जब पाठशाला में जाता है तो सर्वप्रथम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कराया जाता है उसे। व्याकरण पद्धति के अध्ययन करने की आजकल पर्याप्त आलोचना की जाती है। इस पद्धति में प्रायः निम्नलिखित दोष बताए जाते हैं। प्रथम, यह विधि नीरस होती है। द्वितीय, यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। छात्र की मानसिक क्षमता एवं रुचि का व्याकरण पद्धति में ध्यान नहीं रखा जाता। तृतीय, यह विधि भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इसमें वर्णों को इकाई मानकर चला जाता है और वाक्य रचना का अभ्यास नहीं हो पाता। चतुर्थ, यह विधि छात्रों को संस्कृत के प्रयोग का व्यावहारिक ज्ञान नहीं देती। शास्त्रीय व्याकरण में पटु होते हुए भी व्याकरण संस्कृत के व्यावहारिक प्रयोग पर अधिक बल नहीं देते। पंचम, इस विधि में भाषा के अन्य पक्ष उपेक्षित रहते हैं। उपर्युक्त दुर्गुणों की ओर आजकल के मनोविज्ञान वेत्ता हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, किंतु व्याकरण पद्धति के गुण की ओर से हम आँख बंद नहीं बंद कर सकते। इस पद्धति की अच्छाइयों को हम संक्षेप में नीचे अंकित कर रहे हैं। प्रथम, संस्कृत व्याकरण इतना जटिल है कि उसका ज्ञान बिना व्याकरण विधि से भली प्रकार हो ही नहीं सकता। द्वितीय, व्याकरण विधि से छात्र संस्कृत भाषा की बारीकियों को समझ जाता है। तृतीय, व्याकरण विधि को अव्यवहारिक कहना भूल है। इस विधि से छात्र व्याकरण के नियमों को जानकर उनका प्रयोग करते हैं। चतुर्थ, इस विधि से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने वाले पंडितों का उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि यह विधि निरर्थक नहीं है। यदि मनोविज्ञान के सिद्धांतों में यह विधि नहीं आती है तो मनोविज्ञान को अपने सिद्धांतों को पुनः देखना चाहिए और उनमें संशोधन करना चाहिए, ना कि पंडितों की इस विधि को ही निरर्थक बताना चाहिए। इस विधि ने जीवन के सभी क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान उत्पन्न किए हैं। पंचम, इस विधि से अध्ययन करने वाले छात्र भाषागत अशुद्धियाँ कम करते हैं। ये चाहे कम लिखें और कम बोलें, किंतु जो भी लिखते या पढ़ते हैं वह प्रायः शुद्ध होता है। षष्ठ, वर्तमान समय में संस्कृत एक अनति प्रचलित भाषा है। ऐसी भाषा के उच्च एवं विशिष्ट ज्ञान के लिए व्याकरण पद्धति सर्वथा उपयुक्त है। उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्याकरण पद्धति का अपना महत्व है। यद्यपि सभी छात्रों के लिए इस विधि का समर्थन नहीं किया जा सकता, किंतु इस विधि से अध्ययन करना चाहें उनके मार्ग में बाधा भी नहीं आनी चाहिए। इसके विपरीत पाठशालाओं को उचित रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वहां पर छात्र अपने गहन अध्ययन द्वारा संस्कृत भाषा के सौष्ठव को बनाए रखें और सांस्कृतिक परंपरा सुरक्षित रहे। केवल माध्यमिक स्तर में संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार संस्कृत का अध्ययन कराकर जो लोग भारत की सांस्कृतिक परंपरा की सुरक्षा की बात करते हैं, संभवतः वे आधुनिक अच्छे या बुरे सिद्धांतों के प्रति अत्यधिक दीवाने समझ पड़ते हैं। इस पद्धति का अपना स्थान है और यदि इस पद्धति में आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार कुछ आवश्यक परिवर्तन कर दिए जाएं तो यह पद्धति बहुत से छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। व्याकरण शिक्षण पर आगे एक पृथक अध्याय में विस्तार से विचार किया जाएगा। विश्लेषणात्मक पद्धति। विश्लेषणात्मक पद्धति वह है जिसमें अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण करता है तो पहले वह पूरे पाठ की वस्तु से प्रारंभ करता है और बाद में उस पाठ के विभिन्न अंशों का शिक्षण करता है। संपूर्ण विषय सामग्री से चलकर विभिन्न भागों का विश्लेषण या विवेचन किया जाता है। यदि कोई पाठ कहानी का है तो संपूर्ण कहानी पहले सुनाकर बाद में कहानी के महत्वपूर्ण अंशों का अध्ययन होगा। यदि महाभारत की कथा पढ़ानी है या रामायण की कथा पढ़ानी है तो इसी विधि से चला जाएगा। इस पद्धति के पक्ष में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। प्रथम, यदि पद्धति संपूर्ण से अंश की ओर चलने का परामर्श देकर मनोविज्ञान के सिद्धांतों का आश्रय लेती है। द्वितीय, इसमें साधारण एवं सरल बातों के आधार पर विशेष असाधारण एवं कठिन बातों का ज्ञान कराया जाता है। तृतीय, इस पद्धति में बालक रुचि लेते हैं अतः उनका सीखना आनंददायी होता है। इस पद्धति के विरोध में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। प्रथम, यह पद्धति वहीं पर प्रयुक्त की जा सकती है जहां पर विषय को कई खंडों में बांटा जा सके, अतः कथा कहानियों के अतिरिक्त अन्य विषयों में यह इतनी लाभदायक सिद्ध नहीं होती। द्वितीय, केवल विश्लेषण से विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों होने चाहिए। तृतीय, यह पद्धति प्रारंभिक स्तर पर अधिक या मध्य स्तर पर सामान्य रूप से उपयोगी हो सकती है, किंतु उच्च स्तर पर अनुपयोगी ही है। चतुर्थ, संस्कृत भाषा के विभिन्न पक्षों का ज्ञान केवल विश्लेषण पद्धति से नहीं हो सकता। संस्कृत में स्थान स्थान पर व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। अतः अब हम तीसरी पद्धति व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या पद्धति। व्याख्या पद्धति में शिक्षक एक एक शब्द को लेकर उसका अर्थ स्पष्ट करता है। पद का अर्थ बताते समय वह समास विग्रह संधि विच्छेद व्युत्पत्ति आदि बताते हुए संपूर्ण वाक्य अनुच्छेद एवं पाठ का अर्थ बताता है। तत्पश्चात पाठ का सारांश भावार्थ आदि को भी स्पष्ट किया जाता है। लेखक या कवि की शैली आदि का भी परिचय कराया जाता है। इस विधि को व्याख्यान विधि भी कहा जा सकता है। व्याख्या पद्धति को समझने के लिए व्याख्यान संबंधी निम्नलिखित श्लोक ध्यान देने योग्य है। पदच्छेदः पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेप्योथ समाधानम व्याख्यानम षटविधम स्मृतम। अर्थात व्याख्यान के निम्नलिखित छः अंश हैं। पदच्छेद द्वितीय, पदार्थोक्ति तृतीय, विग्रह चतुर्थ, वाक्योजना पंचम, आक्षेप षष्ठ समाधान। उपर्युक्त श्लोक से व्याख्या पद्धति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। व्याख्या पद्धति का प्रचलन प्राचीन काल में तो था ही, आज भी कुछ अच्छे शिक्षक इस पद्धति का आश्रय लेते हैं। व्याख्यान पद्धति के पक्ष में प्रायः निम्नलिखित बातें कही जाती हैं। प्रथम, व्याख्या के शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और छात्र नए नए शब्दों का अर्थ जानकर उनका प्रयोग सीख जाते हैं। इस प्रकार छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि होती है। द्वितीय, विषय ज्ञान की दृष्टि से भी व्याख्या विधि अच्छी होती है। इससे सामग्री पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और छात्र विषय वस्तु को ठीक समझ लेता है। तृतीय, इस पद्धति द्वारा लेखक या कवि की शैली तथा भाषा संबंधी सौष्ठव से परिचय मिल जाता है। चतुर्थ, यदि अध्यापक ने पांडित्यपूर्ण तथा सरस व्याख्या की है तो छात्रों की स्मृति में व्याख्या अधिक दिन तक टिक सकती है। इस पद्धति के विरोध में प्रायः अग्रलिखित बातें कही जा सकती हैं। प्रथम, इस पद्धति में अध्यापक तो सक्रिय रहता है किंतु छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठे रहते हैं। द्वितीय, इस पद्धति में छात्र रुचि नहीं लेते। तृतीय, इस पद्धति में अध्यापक मनोवैज्ञानिक क्रम के विपरीत तार्किक क्रम पर ही अधिक ध्यान देता है। चतुर्थ, इस पद्धति द्वारा छात्रों में स्वाध्याय एवं स्व अनुसंधान की आदत नहीं पड़ती। उपर्युक्त गुणावगुणों पर विचार करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि व्याख्यान विधि अपने आप में सर्वोत्तम विधि नहीं है, किंतु यथावसर इसका प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। अनुवाद पद्धति। अनुवाद पद्धति के विषय में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के अनुसार मातृभाषा के अतिरिक्त जब किसी भी भाषा को सीखा जाए तो उसे अनुवाद पद्धति के द्वारा ही सीखा जाए, जबकि कुछ अन्य व्यक्तियों के अनुसार अनुवाद पद्धति का प्रयोग किसी भी भाषा के अध्ययन में नहीं करना चाहिए। दूसरी विचारधारा को हम प्रत्यक्ष विधि शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ पर हम पहली विचारधारा के विषय में ही विचार करेंगे। यह बात निर्विवाद सत्य है कि बालक मातृभाषा में अपने विचारों को अधिक सरलता, सुगमता एवं स्पष्टता से व्यक्त कर सकता है। मातृभाषा के माध्यम से विषय को ग्रहण करना भी सरल होता है। इसी आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि बालक के मन में जो कुछ भी आए वह मातृभाषा के माध्यम के रूप में ही आए तो अच्छा है। संस्कृत का अध्ययन द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में भी होता है, अतः संस्कृत को यदि मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाए तो अधिक अच्छा है। मातृभाषा के वाक्यों, अनुच्छेदों आदि का संस्कृत में अनुवाद करना अलग बात है। इसके विषय में आगे एक पृथक अध्याय में चर्चा की जाएगी। यहाँ पर अनुवाद पद्धति का तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा को मातृभाषा में अनुवादित करके पढ़ाया जाए। इस पद्धति में के पक्ष में निम्नलिखित प्रायः बात कही जाती हैं। प्रथम, इस पद्धति द्वारा छात्रों को विषय का सरलता एवं सुगमता से ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से बोध सरल होता है। द्वितीय, इस पद्धति द्वारा मातृभाषा तथा संस्कृत भाषा के शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों एवं विभिन्न शैलियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे छात्र के शब्द भंडार की वृद्धि होती है। तृतीय, इस पद्धति में ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन आदि सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। चतुर्थ, अनुवाद द्वारा वाक्य रचना ठीक से समझी जा सकती है। पंचम, इस पद्धति द्वारा अनुमान, तुलना तथा निरीक्षण का अभ्यास डाला जाता है। इस पद्धति के विपक्ष में निम्नलिखित बातें कही जाती हैं। प्रथम, भाषा अभ्यास जन्य है। यदि सदा अनुवाद होता रहेगा तो संस्कृत भाषा को लिखने पढ़ने की योग्यता का विकास करना ही असंभव हो जाएगा। द्वितीय, अनुवाद में प्रायः मक्षिका, स्थाने मक्षिका की प्रवृत्ति रहती है, जिससे भाषागत सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तृतीय, किसी भी भाषा के मूल भाव की पूर्ण रक्षा करना इस पद्धति द्वारा कठिन है। चतुर्थ, प्रत्येक भाषा का अपना संदेश होता है जिसे वही भाषा वहन कर सकती है। पंचम, मूल प्रकृति के रूप में तो है ही, अनुवाद प्रतिकृत के रूप में। प्रतिकृति से प्रकृति सदा श्रेष्ठ होती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए यह आवश्यक है कि उसी प्रकार का वातावरण हो और छात्र उस भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने का अभ्यास करें। यदि कहीं पर अत्यधिक आवश्यक हो तो मातृभाषा का प्रयोग कर लिया जाए, नहीं तो संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाए। इसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रत्यक्ष पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति में पाठ्य सामग्री का मातृभाषा में अनुवाद नहीं किया जाता। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा में लिखने, बोलने, पढ़ने तथा सुनने का अभ्यास करना आवश्यक है। कक्षा का वातावरण ही ऐसा हो कि छात्र संस्कृत भाषा को लिखने पढ़ने में रुचि लें। आदेश संस्कृत भाषा में ही दिए जाएं। पारस्परिक वार्तालाप भी यथासंभव संस्कृत में ही हो। अध्यापन भी संस्कृत भाषा में ही हो। संस्कृत में ही प्रश्न किए जाएं और यथासंभव संस्कृत में ही उत्तरों की मांग की जाए। इससे यह लाभ होगा कि छात्रों को संस्कृत लिखने पढ़ने का अभ्यास ही नहीं प्रत्युत उसमें संस्कृत को समझने की और बोलने की सहज प्रवृत्ति भी उत्पन्न होगी। प्रत्यक्ष पद्धति के पक्ष में प्रायः निम्नलिखित बातें कही जाती हैं। प्रथम, यह पद्धति भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है। किसी भी भाषा को उसी भाषा के माध्यम द्वारा सीखा जा सकता है, ना कि अन्य भाषा के माध्यम से। द्वितीय, इस पद्धति में संस्कृत भाषा को सुनने या बोलने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। तृतीय, प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति है। अनुवाद में भाषा की प्रकृति प्रायः उपेक्षित रह जाती है। चतुर्थ, प्रत्यक्ष विधि में जिस प्रकार भाषा समाज में व्यवहृत है, उसी प्रकार से कक्षा में भी प्रयुक्त होती है। पंचम, प्रत्यक्ष विधि में छात्रों की रुचि एवं योग्यता का ध्यान रखा जाता है। इस पद्धति के विपक्ष में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। प्रथम, यह पद्धति तब सफल हो सकती है जबकि छात्रों को उसे भाषा का कुछ प्रारंभिक ज्ञान हो। छात्र प्रारंभ में संस्कृत भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाएंगे। द्वितीय, जहाँ तक संस्कृत भाषा का संबंध है, इसे बोलना एवं लिखना तभी संभव है जबकि व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान हो जाए। तृतीय, कक्षा में कृत्रिम वातावरण बनाकर प्रत्यक्ष विधि के अनुकूल वातावरण रचा जा सकता है, किंतु परिवार एवं समुदाय में छात्र मातृभाषा का ही सर्वाधिक प्रयोग करता है, अतः यह कृत्रिमता अधिक आकर्षक नहीं है। चतुर्थ, अनुवाद प्रणाली से छात्र सरलता से संस्कृत सीख जाएंगे और संस्कृत की प्रकृति के से भी परिचित होने में बाधा नहीं पड़ेगी। पंचम, प्रत्यक्ष पद्धति द्वारा केवल बुद्धिमान छात्र ही लाभान्वित होते हैं, सामान्य छात्र नहीं। षष्ठ, प्रत्यक्ष पद्धति में समय अधिक चाहिए। उसी तथ्य को अनुवाद पद्धति द्वारा कम समय में समझाया जा सकता है। सप्तम, प्रत्यक्ष पद्धति से पढ़ने के लिए वर्तमान अध्यापकों को अलग हटा कर नए अध्यापक नियुक्त करने पड़ेंगे, जो संभव नहीं है। अष्टम, वाक्य रचना के अभ्यास द्वारा केवल कुछ ही वाक्य रचना साचों को ज्ञान कराया जा सकता है। संस्कृत भाषा में सामान्य एवं अपवाद नियम इतने अधिक हैं कि सब में प्रत्यक्ष विधि अपनाई ही नहीं जा सकती। प्रत्यक्ष विधि के समर्थक प्रायः वाक्य रचना प्रणाली का समर्थन करते हैं। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कुछ दिनों पूर्व अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए खूब अपनाया गया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने के लिए भी प्रत्यक्ष पद्धति असफल सिद्ध हुई। अतः संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए केवल प्रत्यक्ष विधि का आश्रय लेना ठीक नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष विधि तथा व्याकरण एवं अनुवाद विधियों का समन्वित रूप ग्रहण करने में हानि नहीं है। हरबार्टीय पंचपदी। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक हरबार्ट के सिद्धांतों के आधार पर उसके शिष्यों ने हरबार्टीय पंचपदी का विकास किया है। इन पांचों पदों द्वारा पाठ के शिक्षण का विधान किया गया है। ये पांचों पद निम्नलिखित हैं। प्रथम, प्रस्तावना। द्वितीय, विषयोपस्थापन। तृतीय, तुलना। चतुर्थ, सामान्यीकरण। पंचम, प्रयोग। प्रथम शीर्षक, प्रस्तावना। प्रस्तावना में दो एक प्रश्नों द्वारा कवि या लेखक के विषय वार्तालाप द्वारा प्रस्तुत पाठ के लिए छात्रों को तैयार किया जाता है। वर्तमान के लिए तैयारी बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि प्रस्तावना ठीक नहीं हुई तो पाठ की सफलता भी कठिनता से मिलेगी। प्रस्तावना पिछले पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा भी हो सकती है। प्रसंग का वर्णन करके भी प्रस्तावना की जा सकती है। आजकल कुछ प्रश्नों द्वारा प्रस्तावना अच्छी समझी जाती है। विषयोपस्थापना मुख्य भाव के अनुसार पाठ को 2-3 अनुवंतियों में बांट लिया जाता है। प्रत्येक अनुवंति को प्रस्तावना के पश्चात छात्रों के समक्ष उपस्थापित किया जाता है। उपस्थापन में ही शिक्षकों द्वारा आदर्श वाचन, छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन, संधि विच्छेद, समास विग्रह, दंडान्वय, खंडान्वय एवं भाव परीक्षा के प्रश्न आते हैं। तृतीय, तुलना। तुलना में वर्तमान पाठ की तुलना बालकों को संचित ज्ञान से की जाती है। भाषा शिक्षण में काठिन्य निवारण विस्तृत व्याख्या इसी पद के अंतर्गत है। इन सब की चर्चा आगे के अध्यायों में की जाएगी। चतुर्थ, सामान्यीकरण। व्याकरण के पाठों में इसका विशेष उपयोग है। संचित ज्ञान की प्रस्तुत पाठ से तुलना करने पर छात्र स्वयं कुछ सामान्य सिद्धांतों का दर्शन करते हैं। इन सामान्य सिद्धांतों का निर्माण इस पद में किया जाता है। भाषा शिक्षण में इस स्तर पर पुनरावृत्ति के प्रश्न आते हैं। कविता शिक्षण में समान भाव की कविताएं दी जा सकती हैं। पंचम, प्रयोग। प्रस्तुत पाठ की उपस्थापना एवं तुलना के बाद छात्र जब सामान्य सिद्धांत का निर्धारण कर लेते हैं तब बाद में यह भी आवश्यक हो जाता है कि छात्र नवार्जित ज्ञान को व्यवहृत या प्रस्तुत करें। यह प्रयोग की अवस्था है। इस पद में भाषा के पाठों में छात्रों को कुछ अभ्यास कार्य दिया जाता है। कक्षा कार्य एवं गृह कार्य भी प्रयोग के लिए ही दिए जाते हैं। हर बार्टी या पंचपदी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें वही क्रम अपनाया गया है जो विचारों के ज्ञान में अपनाया जाता है। इस पद्धति की आलोचना भी की जाती है। आलोचना की मुख्य बात यह है कि यह पद्धति सभी प्रकार के विषयों में प्रयुक्त नहीं हो सकती। विज्ञान को पढ़ाने में यह असफल ही सिद्ध हुई है। भाषा शिक्षण में भी सभी प्रकार के पाठों में इसका प्रयोग नहीं हो पाता। फिर भी यह पद्धति आवश्यक संशोधन के साथ आज भी काम में लाई जा सकती है। मूल्यांकन का दृष्टिकोण। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बहुत दिनों तक हर्बार्टी विधि का बोलबाला रहा है। उसके आधार पर पाठ योजनाएं बनाई जाती रही हैं। अब मूल्यांकन प्रविधि यह शब्द प्रायः सुनने को मिलता है। इसका अभिप्राय संक्षेप में दिया जा रहा है। मूल्यांकन प्रविधि की दृष्टि से हम शिक्षण से संबंध प्रत्येक वस्तु का मूल्य अर्थात महत्व जानना चाहते हैं। यह कार्य उद्देश्य की दृष्टि से होता है। जो वस्तु उद्देश्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती उसका इस प्रविधि में कोई स्थान नहीं होता। इस दृष्टि से इस विधि में पाठ्य वस्तु, पाठन विधि, परीक्षा विधि आदि प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक वस्तु को उसी रूप में रखा जाता है जिस रूप में वह उद्देश्य की दृष्टि से उचित होती है। इस प्रविधि के आधार पर पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले पाठ का उद्देश्य निश्चित किया जाता है। उसके बाद यह विचार किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने उक्त उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है उसके व्यवहार में पहले की अपेक्षा क्या क्या संशोधन हो जाते हैं। इन संशोधित व्यवहारों को व्यवहार रूप, बिहेवियर अवर पैटर्न कहते हैं। व्यवहार रूपों का निश्चय कर लेने के पश्चात यह देखा जाता है कि पाठ्य वस्तु के किस अंश के अध्यापन के माध्यम से वे व्यवहार रूप छात्र के व्यक्तित्व में उत्पन्न करने होंगे। साथ ही यह भी विचार किया जाता है कि किन किन क्रियाओं को संपादन करके तथा छात्रों से संपादन करा के छात्र उस पाठ्य वस्तु को छात्रों को हृदयंगम करा सकेगा और उन क्रियाओं में से कौन सी कक्षा में चलेगी और कौन सी कक्षा के बाहर। इन क्रियाओं को शिक्षण युक्तियां तथा प्रविधियां भी कहा जाता है। अध्यापन युक्तियों का विनिश्चय करके या सोचा जाता है कि परीक्षा की वे युक्तियां क्या क्या होंगी जिनसे ज्ञात हो जाए कि छात्र में अभीष्ट व्यवहार रूप उत्पन्न हो गए हैं। यदि ये युक्तियां प्रमाणित कर दें कि अभीष्ट व्यवहार रूप छात्र में उत्पन्न हो गए हैं तो माना जा सकेगा कि उनसे संबद्ध उद्देश्य भी प्राप्त हो गया है। इन प्रसंग में एक प्रश्न यह उठता है कि पाठ्य वस्तु के अध्ययन के लिए सही युक्ति अथवा क्रिया कौन कौन सी है और इसका निश्चय किस प्रकार किया जा सकता है। यह प्रश्न स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण है परंतु साथ ही अत्यधिक सरल भी है। इसका सीधा उत्तर यह है कि जो जो क्रियाएं कराके व्यवहार रूप की परीक्षा हो सकती है उन्हीं उन्हीं को कराके अध्ययन भी किया जा सकता है। साइकिल चलाने की योग्यता की परीक्षा जिस प्रकार साइकिल चलवाकर ही की जा सकती है उसी प्रकार साइकिल चलवाकर साइकिल चलाना सिखाया भी जाता है। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विचारधाराओं के संदर्भ में मूल्यांकन का प्रायः जिक्र किया जाता है। मूल्यांकन प्रणाली के पाठ सूत्रों में और हर भारतीय पंचपदी के पाठ सूत्रों में कुछ अंतर है किंतु यह अंतर बहुत कुछ नाम का है ना कि रूप का। मूल्यांकन प्रणाली के पाठ्य सूत्रों का क्रम निम्नलिखित ढंग से होता है। प्रथम उद्देश्य, द्वितीय व्यवहार रूप, तृतीय पाठ्य बिंदु, चतुर्थ शिक्षक के कार्य, पंचम छात्र के कार्य, षष्ठ मूल्यांकन। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि शिक्षक एवं छात्र के कार्यों का क्रम मूल्यांकन विधि का कोई अपना दिव्य क्रम ना होकर हर भारतीय पंचपदी का ही क्रम रहता है। हाँ, मूल्यांकन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह अवश्य है कि इसमें इस बात का मूल्यांकन कर लिया जाता है कि उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं। प्रत्येक पाठ को पढ़ाते समय उस पाठ के शिक्षण का कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अध्यापक पढ़ाता है। यदि छात्रों ने सीखा नहीं तो पढ़ाना व्यर्थ होता है। पढ़ाने की सफलता का मूल्यांकन छात्रों के व्यवहारों में लाए गए परिवर्तनों की जांच द्वारा किया जाता है। प्राचीन एवं नवीन पद्धतियों का समन्वय। भारत का प्राचीन काल संस्कृत भाषा का गौरव काल रहा है। उस समय संस्कृत भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई। यह उन्नति शिक्षकों एवं छात्रों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हुई। उस समय अध्ययन का प्रारंभ उपनयन संस्कार के बाद होता था। छात्र आचार्य के पास जाता था तो आचार्य उसे गायत्री मंत्र का उपदेश देकर विद्या अध्ययन कराता था। विद्यार्थी नियम से उठते थे और प्रतिदिन अध्ययन करते थे जिसे आज इकाई योजना या अभिक्रमित अधिगम प्रोग्राम लर्निंग कहा जाता है। उसका व्यवहृत रूप उस समय देखा जा सकता था। अध्यापक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता था। जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के बड़े बड़े कक्ष थे वहाँ पर झोपड़ियाँ में भी विश्वविद्यालय स्थापित थे। व्यक्तिगत शिक्षा के पर विशेष बल था। प्राचीन प्रणाली में स्मृति पर अधिक जोर था। आजकल छात्र की रुचि का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोनों प्रणालियों के समन्वय की आवश्यकता है। संस्कृत भाषा का ज्ञान तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक छात्र स्मरण करने में पटु ना हो। यदि स्मरण करने वाली सामग्री को अध्यापक अपनी सरल शिक्षण विधि द्वारा रोचक बना दे तो छात्र को याद करने में भी सरलता होगी। तर्क संग्रह में विचारों को ग्रहण करने का सुंदर विवेचन किया गया है। उसमें निम्नलिखित सोपानों का वर्णन है। प्रथम प्रतिज्ञा प्रीपोजिशन, द्वितीय हेतु कॉज, तृतीय उदाहरण एग्जाम्पल, चतुर्थ तुलना कंपैरिजन, फिफ्थ पंचम निगमन कंक्लूजन। किसी भी विचार को ग्रहण करने में इन पांच सोपानों का प्रयोग होता था। इन 5 सोपानों को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि ये हर्बार्टीय पंचपदी से भी अधिक वैज्ञानिक सोपान हैं। हर्बार्टीय पंचपदी में अपना प्राचीन एवं नवीन का समन्वय पाते हैं। विचारों को समझने में जिन सोपानों का प्राचीन भारतीय आचार्यों ने वर्णन किया है, उसी को हेर फेर के साथ हर्बार्टीय पंचपदी में भी कहा गया है। अतः यह प्रश्न निरर्थक सा हो जाता है कि संस्कृत शिक्षा में प्राचीन पद्धति का प्रयोग किया जाए या नवीन का। आजकल प्रश्नोत्तर प्रविधि पर अधिक बल दिया जाता है, किंतु इस प्रविधि का उपयोग पहले भी होता था। उपनिषदों में प्रश्नोत्तर प्रणाली का प्रायः उल्लेख मिलता है। प्रश्नोपनिषद में तो प्रश्न है ही, अन्य औपनिषदिक उपाख्यानों में भी प्रश्नोत्तर प्रणाली अपनाई गई है। श्रीमद्भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन प्ररि प्रश्नेन सेवया उपद्यक्षेयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्व दर्शनीया। इस श्लोक में भी प्रश्न के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया गया है। कहानी कथन पहले खूब प्रचलित था। प्रतिदिन आचार्य अपने शिष्यों को पुराणों की कथाएं सुनाया करते थे। आज भी कहानी कथन को एक मनोवैज्ञानिक युक्ति स्वीकार किया गया है। व्यक्तिगत शिक्षण की ओर आज लोगों का ध्यान विशेष रूप से जा रहा है। पहले व्यक्तिगत शिक्षण ही प्रचलित था। इन सब बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ना तो नवीन प्रणाली ही सर्वथा दोषमुक्त हैं और ना ही प्राचीन ही। दोनों का समन्वय करके अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। ना तो प्राचीन के प्रति और ना ही नवीन के प्रति अनावश्यक आसक्ति होनी चाहिए। जिस प्रणाली में जो अच्छा हो उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इसी आशय के विचार निम्नलिखित श्लोक में भी प्रकट किए गए हैं। पुराण मित्येव न साधु सर्व ना चापि सर्व नवमित्यवेद्यम संतः परीक्षान रद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यनेन बुद्धियः।